ओम शांति। 25 मई 2025 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। गूगल मीट का भी, यूट्यूब लाइव का भी, ये दोनों लिंक दिन के चारों समय और रोज आना के लिए एक ही रहते। आप जब भी जुड़ना चाहें, जिस भी लिंक से जुड़ना चाहें जुड़ सकते। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो के सामने चलती हुई लाइन में, जो नीचे सबसे नीचे लाइन चल रही है, इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपके पास कोई हम सब के लिए सुझाव है तो भी आप भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का हांजी स्क्रीन नहीं आ रही। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को, क्षमा और रहम को अपना लो। किसी को भी कोई शिक्षा देनी है उसके साथ साथ क्षमा को और रहम को अपना लो। दुआएं दो और दुआएं लो, दुआएं दो और दुआएं लो, तो आपका घर क्या बन जाएगा? आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा। किसी को भी यहाँ शिक्षा देने की बात आ रही है, क्योंकि आप किसी को शिक्षा देते हो तो आप मुझे कोई बता सकता है कि शिक्षा किसी को हम कब देते हैं? शिक्षा हम किसी को कब देते हैं, कौन बताएगा? जब वो अशिक्षित हो। टेक्निकल वर्ड आ गया ये, यानी अशिक्षित को भी शिक्षा क्यों देते हैं?
जब कोई आत्महत्या को पहुंच जाए उसको शिक्षा देते
हैं, क्योंकि जो टेक्निकल वर्ड है कि उसके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब उसको ज्ञान देते हैं। पवित्रता नहीं है तो हम उसे पवित्रता देंगे, सुख नहीं है तो उसे सुख चाहिए, जो उससे चाहिए वो हम उसे देंगे। शिक्षा नहीं है तो उसको शिक्षा देंगे। अब उसको शिक्षा ले क्यों, उसे पहले ये आभास कराना पड़ेगा कि उसे शिक्षा की जरूरत क्या है। अब हम छोटे बच्चे को जबरदस्ती स्कूल में भेजते हैं क्योंकि हम उस छोटे बच्चे को नहीं समझा पा रहे कि ये जाना तुम्हारा जरूरी है। उसको नहीं मालूम, उसे लगता है कि घर सबसे अच्छा है, ये क्या मुसीबत है स्कूल जाओ। परंतु जब उसे स्कूल में जाना अच्छा लगने लगता है, दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, मतलब उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, तो कहता है घर में रहना क्या जरूरत है, मम्मी सारा दिन तंग करती रहती है, तोड़ कर करती रहती है, दादी खराब है, ये दादा भी खराब है और ये सारे खराब है, स्कूल अच्छा है। मतलब ये डिपेंड करता है कि उसे स्कूल से इंटरेस्ट आ जाए। फिर वो स्कूल जाता है, उसे लगता है कि मेरे जीवन का ये एक रूटीन है, मुझे रोजाना स्कूल जाना है, तब वो खुशी से जाता है। वहां से पता लगता है कि मेरा भविष्य इसी पर निर्भर करता है, तब वो दौड़ दौड़ करके स्कूल में जाता है। घर में आकर के भी स्कूल में रहता है, होमवर्क करना है, काम पूरे करने हैं, मतलब वो फिर स्कूल का ही हो जाता है। अब उसे समझ में आ गया कि मुझे वहां, तो ये शिक्षा किसी को हम तब देते हैं जब उसके पास शिक्षा नहीं, हम समझ उसे तब देते हैं जब उसके पास समझ नहीं। जब वो समझ वाला काम नहीं कर रहा, दुनिया वाली शिक्षा तो उसके पास है, क्योंकि शिक्षा शब्द दुनिया वाली शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु यहाँ शिक्षा देने का मतलब था किसी को ज्ञान देना, किसी को समझाना कि तुम ये जो करते हो वो गलत है, तुम्हें अब राइट करना चाहिए, तुम्हें अब गलत नहीं करना चाहिए। जो उसके जीवन में गलतियां हो रही हैं, क्योंकि उसे उन कर्म करने के बारे में सत्य ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा आकर जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं वो हम उसे देना चाहते हैं, वो से हम देना चाहते। अब हमारे पास बाबा कहते बच्चे, ये ज्ञान देने का ठेका किसके पास है? हमारे पास कहाँ से आ गया? तुम्हारे पास कहाँ से आ गया ये ठेका? तुम ठेकेदार कब से बन गए ये पहले मुझे बता दो। ये सारे संसार की आत्माएं मेरे बच्चे, सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाने का मेरा अधिकार, तुम बीच में ये अधिकार लेने वाले कौन? तुम उन्हें सुधारने वाले कौन है? सुधारने का ठेका मैंने लिया है, सारे संसार को पतित से पावन बनाने का ठेका मेरा है, तुम कैसे? जिसका काम उसी को साधे, दूसरा करे तो ठीक है ना। तो आप पहली पहली बात तो सुधरने की जरूरत हमें है, कि पहले हमें ये समझना है कि ज्ञान देने का ठेका सिर्फ एक ठेकेदार को है, वो जितनी इजाजत दे उतनी करे। हमारे लिए पहले तो हम अपने को ठीक करें ना। शिक्षा के साथ किसी को भी शिक्षा देने वाले तुम कौन हो? जब तुम्हें समझ में आ गया कि जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है, फिर तुम उसको सुधारने वाले कौन हो भाई? बताओ उसने क्या गलती की है? उसने पहल गांव में उनको मारा है, बस इतनी है ना बात, उसकी क्या गलती है मुझे बताओ? और उन्होंने किया किसी ने, चलो तुमने जो मक्का कर दिया वो तुम भी राइट हो, उनको भी हम कुछ नहीं कहेंगे। अब क्या करना है? क्योंकि हमें क्रोध आ जाता है, हमें क्रोध आ जाता है। जब हमें क्रोध आ जाता है फिर हम किसको शिक्षा दे रहे हैं तो गलत गलत को ठीक कैसे करें? वो गलत है, ठीक है। अब आपको क्रोध आ गया है, आप उसे ठीक कैसे करें? आप खुद गलत हो, गलत गलत को ठीक कैसे करेगा? इसके लिए बाबा हमें सबसे पहली बात समझाते, बच्चे तुम पहले क्षमा करो। किसको क्षमा करें? अपने आप। कैसे क्षमा करेंगे हम अपने आप को? कैसे क्षमा करेंगे अपने आप को? कभी आपने क्षमा किया अपने आप को? अब वो गलती कर रहा है, वो मेरे बेटे को मार रहा है, हाँ जी, वो मेरे बेटे को मार रहा है भाई, और बंदूक लेके खड़ा हुआ है, उसको मैं क्षमा कैसे कर दूं? अच्छा, पहले तो समझना है ये बेटा बेटा नहीं है, वो दुश्मन दुश्मन भी नहीं, वो सब आत्माएं हैं, वो सब अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही है, और दोनों बेकसूर, दोनों बेकसूर है, है नहीं? परंतु जो होने जा रहा है वो इनका गलत हिसाब किताब होने जा रहा है, इन दोनों का हिसाब किताब गलत होने जा रहा है। उन दोनों को बड़े प्यार से, बिल्कुल बड़े प्यार से, मतलब यदि हमारे अंदर फीलिंग आ गई है तो हम उन्हें शिक्षा नहीं दे सकेंगे, ये याद रखना। फिर हम शिक्षा नहीं दे सकेंगे, बड़े प्यार से और अधिकार से कहना, प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन। वो ताकत आपके पास हो शांति, जो उन्हें रोक सके। आप क्रोध में कहोगे रुक जाओ तो वो नहीं रुकेगा। आपकी अवस्था हलचल में नहीं आई है, आप एकदम स्थिर बुद्धि हैं, फिर आप उसे रोक रहे हैं, रुक जाएंगे। ये रुकना ही आपकी सफलता है, क्योंकि आपने रोका है और अब उन पर रहम करो। अब रहम उन पर करने से पहले अपने पर रहम करो। ये स्मृति के साथ कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में कोई गलती ना हुई है ना होगी। अब आप उन दोनों को निष्पक्ष रूप से देख सकेंगे और दोनों को निष्पक्ष रूप से बता सकेंगे। आप निष्पक्ष रहेंगे तो वो आपकी बात दोनों सुन सकेंगे। और होना वही है जो ड्रामा में है, आप केवल उन दोनों को उस समय सच्चाई कर्मों की गति पाठ नहीं पढ़ाना है उस समय, परंतु शोर में बताना है कि जो कुछ भी आप करेंगे वो आपको लेना पड़ेगा। आप उसको समझा रहे हैं पर तो अपने बेटे को नहीं समझा, तो नहीं समझ पा रहा है, वो गलती नहीं करता और वो पहले ही गलती कर देता है तो भी ड्रामा। आप समझा रहे हैं आपका बेटा रुक गया है, वो नहीं रुका तो भी ड्रामा। कोई भी गलती कर सकता, और ड्रामा में नृत्य होने पर ही आप अपने पर और सब पर निष्पक्ष राय दे सकते। और राय देने के बाद माने या ना माने, अपने आप को या किसी को दोष नहीं देना। तब दुआएं दो और अपना, अच्छा अपना रहम को अपना लो, दुआएं दो और दुआएं दो। नहीं माना तो भी अपने व्यवहार को आपने खराब नहीं करना, अपनी बुद्धि में उसके प्रति कोई भी बात नहीं रखना। जब हम अपनी बुद्धि में उसके प्रति कोई भी क्रोध या नफरत या ईर्ष्या या किसी भी प्रकार का भाव, नेगेटिव भाव नहीं रखते, तब हम उनके साथ व्यवहार अच्छा कर सकते। दुआएं तब लेनी है, उसने आपके बेटे का मर्डर कर दिया है, आप भी उससे दुआएं लेनी है। अब भी आपने उससे दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। जो हुआ है वो राइट हुआ है, उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। उन दोनों आत्माओं का इसी प्रकार से कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ। उसे कानून के हवाले करो, जो मर्जी करो। और आप भयभीत हुए कि ये मेरे को भी गोली मार देगा, तो भी आप क्या हो गए, शिक्षा देने लायक नहीं रहे। आप अपने आप को सेफ करना चाहते हैं, सेफ करें, पैनिक होकर के नहीं, भयभीत होकर के नहीं। फिर हम शिक्षा नहीं दे सकते, फिर हम दुआएं नहीं दे सकते, फिर हम दुआएं नहीं दे सकते। आज हमारे सारे दुख का कारण भय है। हमें बच्चे पर अटैक होने पर देखते हुए क्रोध आया, भय के कारण। अपने ऊपर अटैक करते हुए क्रोध आया, भय के कारण। भय है तो देह अभिमान है, देह अभिमान है तो हम ना तो उसे अपने आप को क्षमा कर सकते हैं, ना उसे क्षमा कर सकते हैं, ना अपने पर रहम कर सकते हैं, ना सामने वाले पर रहम कर सकते हैं। तो आपका घर आश्रम बन जाए, आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाए। चाहे वो छोटी सी बात हो, किसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने मेरे साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, झगड़ा करके अपने आप को क्रोधित करके, अपने आप को ईर्ष्या और बदले की भावना में रख के सिर्फ आप अपने जीवन को दुखमय बना सकते। आप सोच कर बताओ कि ऐसे स्कूल में हमें पढ़ना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, सोच कर बताओ। तो आगे की मुरली शुरू करें, पढ़ना चाहिए। ये मुरली 4 सितंबर 2005 को चलाई थी। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है, पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है, पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो, बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भाव योगी भाव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसके चाल चलन चेहरा चमकता है, इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषता उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी, चेहरे और चलन में दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, रियलिटी है। मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता हूं। मेरा अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से क्या बन जाता है? समर्थ बन जाता है। रॉयल्टी है, स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला पर्सनैलिटी है, सदा संतुष्ट और प्रसन्नता। पर्सनैलिटी क्या है? सदा संतुष्ट और संपन्नता, प्रसन्नता। स्वयं भी संतुष्ट, अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। बाप दादा ने सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वो जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया है, अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाए। सबसे पहला खजाना दिया ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते। दूसरा खजाना याद और योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते। तीसरा खजाना धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिसके सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त है। बाप सभी को एक जैसे खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म भी कर दे, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते। दोनों में कोई अंतर बताया है क्या बाबा ने? बताया कोई अंतर? कोई बच्चे, ध्यान से समझना अंतर, किसी को समझ में आया? मेरे को तो समझ में नहीं आया। एक बार फिर से सुनो और ध्यान से बताओ। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते, और कोई बच्चे, तीसरा भी हम देख लें, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। तीन प्रकार की बातें बता दी, मेरे को कंफ्यूजन कर दिया, कोई मुझे समझा। कौन समझाएगा? जो जमा करते हैं वो कौन से, क्या करते हैं? उनका जमा हो जाता है।
कोई ज्ञान को सुनता है अपने पास रखता है, और कोई ज्ञान को सुनता है औरों को बांटता है।
अब जो ज्ञान अपने पास रखेगा اور دوسرے کو نہیں دے گا وہ کس میں جائے گا؟ ہاں جی
جان کا لابھ لے کے کھا کے ختم کر دے گا,
جان کا لابھ کھا کے ختم کر دے گا. جان کا لابھ تو تبھی ملے گا نا جب میں کسی کو سکھ دوں گا, ہاں جی. نہیں میں نے جان لیا, میں نے جان لیا, میں نے اپنے اندر پریم لیا, میں نے اپنے اندر شانتی کو انبھو کیا, پویترتا کو انبھو کیا, اور صرف وہ میں نے انبھو کیا, میں نے لیا, پرنتو اس کو میں نے پریکٹیکل اپنے جیون میں نہیں لایا, صرف سننے تک تھا اور اس کو انجوائے کیا. یہ باتیں بہت اچھی, پریکٹیکل جیون میں نہیں آیا. جب ہم نے سنا اور کیول اور کیول سن کر کے انجوائے کیا, بہت اچھا جان ہے, بہت اچھا جان, پرنتو اس کو اپنے جیون میں دھارن نہیں کیا. یہ ہے سنا لیا اور انجوائے کیا, جمع کرتے ہیں وہ جو جان لیا اور اپنے جیون میں دھارن کیا, تو وہ میں نے اپنے جیون میں دھارن کر لیا ہے تو میں میرے سمبندھ سمپرک میں جو آ رہے ہیں ان کو میرے سے پیار مل رہا ہے, شانتی مل رہی ہے, پویترتا کا انبھو ہو رہا ہے, سکھ کا انبھو ہو رہا ہے, تو وہ ان کو مل رہا ہے, وہ میرا جمع ہو رہا ہے. تیسری اوستھا کو دھیان سے دیکھیں گے, جب میں نے جان لیا, میں نے اسے اپنے جیون میں دھارن کیا اور پھر میں نے اوروں کو انبھو سہت دھارن کرنا سکھایا, تو وہ بڑھتا جائے گا. انتر دھیان سے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, یا کچھ پرشن ہے تو کچھ. کسی کا کوئی بھی پرشن ہے تو پوچھو, مطلب سپشٹ ہونا چاہیے, ڈاؤٹ ہے تو کلیئر کرو. پہلا ہے سیلف انجوائے, بس اس انجوائے کو بانٹا نہیں. دوسرا ہے سیلف انجوائے کیا اور سمبندھ سمپرک والوں کو بانٹا, اور تیسرا ہے سیلف انجوائے بھی کیا, سمبندھ سمپرک والوں کو بھی دیا, اور جو سمپرک میں آئے ان کو سکھایا آپ بھی کرو, ان کو بھی آپ سمان بنایا, تب بڑھتا ہے. جمع نے بڑھ گیا, جمع تو اس کا بھی ہوا جس نے میں نے شانتی کا انبھو کیا اور میں نے اپنی شانتی کو دوسروں کو بھی میرے سمپرک میں آئے ان کو شانتی انبھو ہوئی, میں نے پویترتا کا انبھو کیا, میں نے اپنے آپ کو پویتر رکھا تو ان کو بھی پویتر رکھا, تو وہ میرا جمع ہوا, وہ میرے کو بھی اپویتر نہیں بنائے گا. میں نے سکھ کا انبھو کیا, میں نے اپنے سکھ سے اس کو بھی تو سکھ دیا, جو سمبندھ سمپرک میں آیا میں نے اس کو بھی سکھ دیا, میں نے ان کو سہیوگ دیا وہ مجھے دیں گے نا, یہ میں نے جمع کیا. اب وہ روحانی تھا جسمانی تھا یا کوئی بات نہیں ہے, روحانی تھا روحانی ملے گا, جسمانی تھا تو جسمانی ملے گا. پرنتو परमात्म डायरेक्शन पर मैंने अपने आप को सुधारा, मैंने उस सुख का अनुभव लिया, मेरे संबंध संपर्क में आए उन्होंने भी उसका अनुभव किया और मैंने उनको अपना अनुभव शेयर करके आप समान बनाया, तब ये बढ़ रहा, मल्टीप्लाई हुआ। क्योंकि जितनों को मैंने आप समान बनाकर सेवा करने के निमित्त बनाया, उनके दिल में भी मेरे प्रति जगह बढ़ी और जिनको वो सिखाएंगे वो भी थोड़ा बहुत उसके संपर्क से मेरे संपर्क में आएंगे, मल्टीप्लाई होगा वो। दुआएं मिलेंगी, दुआएं मल्टीप्लाई होकर के मिलेंगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर दे, अपने तक ही सीमित रखा। और कई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते जिन्होंने अपने जीवन में लाकर सबको अनुभव करा दिया। मतलब अनुभव क्या कराया? जो वो खुद अनुभव करा, मैं सुखी हूं तो मेरे संपर्क में कोई आया वो भी सुखी, मैं दुखी हूं मेरे संपर्क में कोई भी आया वो भी दुखी हुआ। ना मैंने उसको दुख करना सिखाया, ना मैंने उसको सुखी बनाना सिखाया। तीसरा है कि मैंने उसे सुखी बनना और बनाना सिखा दिया, अब मल्टीप्लाई। और कई बच्चे कार्य में भी लगाते, अपने जीवन में लाके उन्होंने लगाया, लेकिन बढ़ाते जाते। और बढ़ाते जाने का तरीका है, बढ़ाने की चाबी है खजानों को स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो खजाना मिला वो खुद भी यूज करना है और दूसरों को भी यूज करना सिखाना। जो यूज करता है वो बढ़ाता है। जो अब तो अब अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जमा हैं, क्या कहेंगे? हाथ खड़े करने का टाइम आ गया, सोच समझ करके हाँ या थोड़ा थोड़ा। पूरा जमा है तो हाँ, थोड़ा थोड़ा जिसके पास ये खजाने जमा हैं, वे सदा भरपूर रहते हैं। देखो कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती, अजल गगरी छलकत जाए। आधी होगी तो छलकेगी, भरी हुई होगी तो छलकेगी नहीं। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वो हिलती है। तो यहां भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। सदा ये नशा रहे कि खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं बाबा का बच्चा बना हूं तो बाप के सारे खजाने का मैं मालिक हूं। बाप ने दिया आपने लिया तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो आज जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है, जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता कि बाप के पास क्या है, क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है। कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले, और जो समाने वाले होते हैं वो नशे में रहते हैं, वो नशे में रहते हैं। आज बाप दादा, आज नए नए बच्चे भी आए हैं, बाप दादा आप लक्की बच्चों को, आप सबके भाग्य की, आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे। अपने भाग्य को पहचाना, पहचाना है परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय भी संगम युगी भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन संगम युग का समय इससे भी भाग्यवान। क्यों क्यों भाग्यवान? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में, आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों का बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना? मुश्किल तो नहीं चाहते हो? इन बच्चों को, पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना? सबसे सहज, और कुछ भी करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना? हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी, तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं ले और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो, दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ को बहुत सहज, तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितनी कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना, दुआएं लेना, ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो। ये कर सकते हो, कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो, तो दाता का काम क्या है? क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है जो सबको पसंद है क्या है? सबको दुआएं देना, जिसको दुआएं देंगे वो खुश हो जाए। कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन है तो आपका भाई बहन, परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना, तो परमात्मा का बच्चा है मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, इसको क्या देंगे? आप अपने भाई बहन को क्या देंगे? बददुआ देंगे क्या? बाप कभी दुआ देता है? बाप कभी दुआ देता है? देगा? देता है या ना? हाँ ना, कुछ करो तो सही भाई, कुछ नहीं करो। गुस्सा आता होगा बाबा को तो नहीं आता, बच्चे हाँ भी नहीं कर रहे, ना भी नहीं कर रहे। बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वो दे ना दे लेकिन आप दुआ लेंगे। किससे लेंगे? वही देगा, देना पड़ेगा। आपने दुआ दे दी है, अब उसे दुआ देनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ यही तो प्रश्न है, क्या करेंगे? बाप दुआ नहीं देता? क्यों भाई? बाप आपको दुआ देता है कि नहीं देता? आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, सर्वशक्तिमान भाव, शांत स्वरूप आत्मा भाव, रोजाना जो स्वमान आपको बाबा देता है वो दुआ देता है कि नहीं देता है? आप उसको गालियां निकाली, आपने उसको सर्वव्यापी कहा, आपने इसको जो मर्जी आए बोला, फिर भी वो बाबा आकर रोजाना आपको बोले मीठे मीठे बच्चे, पता है ये बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, फिर भी क्या कहते हैं मीठे बच्चे, अब आप मेरा कहना मानना शुरू कर, आप दुआएं देता है कि नहीं देता? पाठ पढ़ाना क्यों पढ़ा रहा है हमें? वो करेगा, दुआएं देने वाला देगा, परंतु लेने वाला तो अपनी मर्जी से लेगा ना। तो बाबा की सबसे बड़ी दुआ हमें पढ़ाने का संकल्प आया। इतनी बड़ी दुनिया में से परमात्मा ने हमें चुना और हमें पढ़ा रहा है, ये सबसे बड़ा रहम है हमारे ऊपर, सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, ये सबसे बड़ी हमारे प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। अभी कोई डाउट है तो पूछो। बददुआ देंगे क्या बताओ? बाप कभी बददुआ देता है? देगा? देता है हाँ या ना? कुछ करो तो सही। अब करो तो सही कि हाँ या ना, बोलते नहीं है, ये समझ में नहीं आया अभी तक भी। भाई ने कितना विस्तार से पूछा, अभी समझ में नहीं आया क्या? वो तो आपका है, अब ये बताओ कि बाबा जो दुआएं देते हैं कि नहीं देते, ये बताओ। बाबा ने तो क्वेश्चन ये पूछा।
वो तो भाई उनका काम है।
क्या काम है उनका? नहीं भाई, ये बात नहीं है, ये बात आगे की बातें नहीं है। ऑटो मोड है, परंतु ऑटो मोड क्या है? दुआएं देना या ना देना? बाबा एक ही तो है जो निस्वार्थ हमें दुआएं देते हैं, किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी फर्क किए बिना दुआएं देते हैं। लेना ना लेना उससे अलग बात है, उसको यहाँ नहीं ले रहे। बाबा तो अपने बारे में पूछ रहा है, मेरे बारे में बताओ कि मैं तुम्हें दुआएं देता हूं कि नहीं देता हूं। बाप बद दुआएं देंगे कि दुआएं देंगे? बाबा ये पूछ रहे, फिर से ध्यान से आप सोच के बोलना है। फिर मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। पहले भाई जी सुन लो, फिर से सुन लो, फिर बोलना। आगे किसी ने बाबा ने हाँ या ना में जवाब पूछा, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं फिर किसी का चल दिया आगे, उनका ठीक है भाई। तो परमात्मा का बच्चा है मेरा, इसके लिए भाई है, इसके लिए बहन है, इसको क्या देंगे? अब आपका भाई या बहन है, अब बताओ उसे क्या देंगे? बद दुआ देंगे क्या? पहले तो इसका जवाब दो, आप अपने भाई बहन को बद दुआ देंगे क्या? देंगे नहीं देंगे? ठीक है, थोड़ा जोर से बोलो ना, मेरे कान तक आ जाए। अब मेरे कान तक आएगी तो जो सुनने वाले हैं उनको भी सुनाई देगा, नहीं तो वो कहेंगे जी आप क्या सुनाते हो, कुछ सुनते, कुछ सुन रहा होता है कि नहीं सुन रहा होता, उसकी आवाज तो हमारे पास आती है। अच्छा, अब बाप अपना प्रश्न पूछ रहा है, बाप कभी बद्दुआ देता है? देगा, देता है? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। क्या देता है? देखा ध्यान से, नहीं सुना तो। अरे भाई फिर से ध्यान से सुनो, यही होता है, मतलब सिर्फ ध्यान से नहीं सुनते हैं। बाप कभी बद दुआ देता है? देगा, देता है? कुछ बोलो, हाँ या ना। हाँ जी, नहीं देता। ये अब आप सोचो कि इतनी देर में हमने समझा, अब इतना पेशेंस हमें चाहिए मुरली सुनने के लिए। अब हम अपने आप में देखें कि इतनी देर मंथन करने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि बाप बद दुआ नहीं देता, इसको रीडिंग करने में मजा नहीं आ सकता। बहुत खुश रहेंगे, क्यों? अगर बद दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वो दे ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है, वरदान याद रखो। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुशी रहेगी। वरदान सुनाएं, सुनेंगे, वरदान है। अगर आप कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। हर्षी मुरली का सर, कितना बड़ा दुख दे आपने दुख लेना नहीं, बाप क्यों दुख दुआ देता है, बद्दुआ नहीं देता, क्योंकि वो दुख लेता नहीं। दुनिया में होने वाली किसी बात से सारे उनके बच्चे उनको गोलियों से भुना जा रहा है और आखिर में उनको सड़ाया जाएगा, जलाया जाएगा, आग में जलाया जाएगा। सोच के देखो, उनके सारे बच्चों को चाहे बाढ़ में जाए, भूकंप में जाए, चाहे कहीं भी जाए, कितना बड़ा दिल है उसका, उस सब को सोच करके कितना मजबूत बना बैठा है कि उनके बच्चे जो यहाँ खेल करने आए थे वो क्या बोलते हैं ज्वालामुखी आग में ऐसे साइकिल के अंदर कुछ दिखाई नहीं देंगे, रहेगा ही नहीं उनका। कितना मजबूत बन के बैठा हुआ है, और उसके सामने हम कहाँ हैं। सारे बच्चे तिल तिल करके एकदम यज्ञ के अंदर स्वाहा हो जाएंगे, सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, होएगा बैठकर क्या। आपका बाप रोएगा बैठकर क्या, बताओ। अब हम क्या करें, क्या हम इतने पक्के बन सकते हैं।
बाप तो अबोलता है, मैं रोते
नहीं। ये बात सुनेगा आपका बाप, ये बात आपका बाप सुनेगा, जो सुनाएगा उसकी तरफ देखेगा। मैं पूछ रहा हूँ, हम गलत स्कूल में फंस गए हैं, ठीक है कि नहीं, और फिर गलत क्लास में फंस गए हैं, ये भी साथ में है। खाली मुरली पढ़ते जाते तो जान छूट जाती, सच्ची बात। क्या करें, आप कुछ कर भी नहीं। अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं, वो दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया लेकिन लेने वाले तो आप है ना, देने वाला नहीं है। अगर वो बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है, नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना, तो बुरी चीज ली जाती है क्या। कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप लेंगे नहीं लेंगे, बताओ, नहीं लेंगे ना, तो लेते क्यों हो, ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी होना होता है, दुखी कौन होता है, जो दुख लेगा वही तो दुखी होगा ना। आप होते हो या वे होता है दुखी, लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो यही खत्म हो जाएगा, तो आपका दूर हो जाता है आधा, वही के वही नहीं लेंगे तो लेंगे ही नहीं ना। और आप दुख से बजाय उसको फिर सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी, तो सुखी भी रहेंगे, दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी आप हो, आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दो, शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा को का स्वरूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो, शिक्षा भी दो, दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी, अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगी। शिक्षा धारण नहीं होगी, ऐसे है ना, अनुभव है आपको, आप भी किसको किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते, आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है लेकिन क्षमा करना दोनों साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यारा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही शुभ रूप शुभ क्षमा, ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो वे ना करें, वे नहीं हो, वे प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव, उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला, ना दुख देना है ना दुख लेना है, पसंद है तो अभी लेना नहीं, पसंद है तो अब लेना नहीं, दुख गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे होना तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्रायल करो, करेंगे ना, तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना, पहले घर वालों को करो, फिर आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना, अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है, घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है, उस समय अच्छा लगता है नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए भी है आज VIPs के साथ मधुबन वाले भी सामने बैठे हैं, अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से, ना दुख लेना ना दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर अपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है, बच्चों के लिए तो है, और अधिकारी बच्चों के बाप सहयोग नहीं दें ये हो नहीं सकता। असंभव को परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी है ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्वयं परिवर्तन से, पहले घर को परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन, फिर देश का परिवर्तन, पहले देश का फिर विश्व का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाएगा, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं, आश्रम अलग कर दिया, जंगलों में भेज दिया, घर अलग कर दिया, घर को आश्रम बनना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा, मंदिर में मूर्ति क्या करती है, दुआएं देती है और दुआएं लेती है। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं, दुआ दो, मर्सी मर्सी कह करते से कह के चलाते हैं, तो आपको भी क्या देना है, दुआ देना, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं, स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे, आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख ना लेना ना दुख देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है, इतने जो भी सब आए हैं, भारत के करीब 250 VIP रिट्रीट में आए हुए हैं, इतने घर तो आश्रम बनेंगे, बनाएंगे ना, पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा, जो कहते जो समझते हैं, कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन करना भी पड़े तो समाने का की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है, सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर को घर स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ, देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब ले जाना, फिर देख कर नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियां इनको इनको इसका क्या प्राइस देंगी, हाँ बोलो दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी, अपने घर वालों को ले आने, ये तो प्राइस नहीं दी ना। दादी ने कहा अपने घर वालों को ले आने, बाबा कहते ये तो प्राइस नहीं दी, ये तो काम सुना दिया, बाबा जो आज्ञा करे। दादी कहती है बाबा को कि बाबा जो आज्ञा करे, देखो प्राइस तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लेकिन है, लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपने रिजल्ट लिखना, जो एक मास भी दुख नहीं लेगा ना देगा उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजें। अच्छा चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को याद दादा की याद बाप दादा को मिली, चाहे फोन द्वारा याद भेजी, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया, तो बाप दादा सभी बच्चों को चाहे भारत के चाहे विदेश के रिटर्न में दुआएं और याद किया पदम गुणा दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर निर्विघन निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्ची दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। वरदान भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भाव, किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान में रखें, दो बातें ध्यान में रहें। नंबर एक, हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को यूज करता है। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना, सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनना सुनाना नहीं है लेकिन सर्व संबंधों को, सर्व शक्तियों को अनुभव करने के लिए अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों के करेक्शन करने के बजाय ایک بات سے ٹھیک کنیکشن رکھتے ہیں، بجائے دنیا کو ٹھیک کرنے کے آپ اپنا کنیکشن بابا کے ساتھ رکھتے ہیں. اگر اشارہ ہے روحانی رائلٹی اور پیورٹی کی پرسنالٹی دھارن کرو، اپنا نجی سوروپ وابردانی سوروپ سدا سمرتی میں رہے، آپ پوترتا اور وسمرتی کا نام نشان سماپت ہو جائے گا. وسمرتی و اپوترتا کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کی اویدیا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سنسکار و سوروپ آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ کے پورو جنموں کا تھا. ابھی آپ براہمن ہو، یہ تو شودروں کے سنسکار و سوروپ ہے. ایسے اپنے سے بھیل ارتھات دوسرے کے سنسکار انبھو ہونا، اس کو کہا جاتا ہے نیارا اور پیارا. اچھا اور وستار سے جاننے کے لیے وشو میں 140 دیشوں میں پرجا پتا برہما کماری اس طرح وشو ودیالیہ کے کسی بھی سیوا کیندر پر سمپرک کرے، اور یدی کوئی پرشن ہے تو 9213106986 پر کیول ٹیلی گرام کرے 9650692270 پر کیول واٹس ایپ کرے فون نہیں. ہو سکتا